मैं आप लोगों की सेवा में आज की समस्याओं के कोई जवाब लेकर नहीं आया। मेरे पास कोई रामबाण नुस्खे रेमिडीज नहीं है और मेरा पेनेशिया मॉन्गर्स पर विश्वास भी नहीं। आप लोगों के साथ बैठकर समस्याओं को समझने की कोशिश करूंगा और समस्याओं की समझने की कोशिश में से ही शायद उनके जवाबों की दिशा हमको मिल सकेगी। आज की परिस्थिति के मुख्य लक्षण क्या हैं? इस देश में सब तरफ राज्य छा गया है, राजनीति की परिभाषा में इसे हाइपर ट्रॉफी ऑफ द स्टेट कहते हैं। हाइपर ट्रॉफी ऑफ द स्टेट राज्य संस्था का अति विस्तार, इतना विस्तार हो गया है कि हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों में और सारे अंगों में उसका प्रवेश हो गया है, प्रवेश ही नहीं प्रभुत्व हो गया है, राज्य संस्था का प्रभुत्व। एक श्लोक पुराना है, कालो वा कारणम राज्ञः, राजा वा काल कारणम, इति ते संशयो मा भू राजा कालस्य कारणम। राजा का कारण काल है या काल का कारण राजा है, ऐसी शंका तुमको नहीं होनी चाहिए। राजा ही काल का कारण होता है, ये पुरानी परिस्थिति थी। इसका परिणाम यह हुआ कि नागरिक जिम्मेवार नहीं रह गया। अपने जीवन के लिए नागरिक जिम्मेवार नहीं रह गया। राम राज्य में एक ब्राह्मण का बेटा मर गया, जवान बेटा बूढ़े ब्राह्मण का, तो राम के दरबार में आया और उसने कहा कि तेरे पाप के कारण मेरा बेटा मर गया। इसका अर्थ यह हुआ कि नागरिक मनुष्य नहीं रहा। मित्रों, मनुष्य का मुख्य लक्षण है अपने कर्म के लिए जिम्मेवार, अपने कर्म का दायित्व जो स्वीकारता है वो नागरिक है, वो मनुष्य है। ईश्वर को भी अपने कर्मों के लिए वो जिम्मेवार नहीं मानता, ये मनुष्य की शान है। राज्य संस्था का जब अति विस्तार हो जाता है तो नागरिक राज्य निर्भर हो जाता है। नागरिक की राज्य निर्भरता एक तरह से उसके मनुष्यत्व का विसर्जन है। वो अपने स्वत्व का और अपने सत्व का विसर्जन कर देता है, राजा को सारी जिम्मेवारी सौंप देता है और स्वयं अपने जीवन के लिए जिम्मेवार नहीं रहता है। ये ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी से मतलब राज्य शासन, राज्य सत्ता, राज्य तंत्र। और हम यहाँ इस देश में जिस तंत्र में रह रहे हैं वो राज्य तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। इसकी विभूति, इसका नायक नागरिक है, राज्यकर्ता नहीं। राज्य संस्था इसकी विधाता नहीं है, लोक संस्था, लोक इसके विधाता होने चाहिए। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि राजनीति और राज्य संस्था हमारे जीवन में अंग प्रत्यंग को व्याप गई है। इस परिस्थिति में से हमको रास्ता खोजना है। क्या परिस्थिति है? 1977 तक इंदिरा जी का शासन था, उसमें इमरजेंसी आई कटोकटी। आपने देखा कटोकटी में सब तरफ सन्नाटा था। सन्नाटा से मतलब शांति नहीं है, शांति पीस नहीं थी, सन्नाटा था। सब लोग दबे हुए थे। आज जो विद्यार्थी इतना उपद्रव कर रहे हैं, जो मजदूर इतने घेराव और हड़तालें कर रहे हैं, जो सरकारी नौकर आए दिन हड़तालें कर रहे हैं, बैंक के आदमी कर रहे हैं, ये सब कहाँ चले गए थे, कहाँ तिरोहित हो गए थे, हमको कुछ पता नहीं था। उस शासन में से 1977 में जनता पार्टी का शासन आया, उन्होंने नागरिक की आजादी लौटा दी, लेकिन इससे अधिक वो कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं किया। इंदिरा जी का अकेली का शासन था, जनता पार्टी में किसी का शासन नहीं। नतीजा यह है कि अब एक तरह का वैक्यूम है, एक खालीपन है। एक खालीपन पैदा हो गया है। किस कारण? 1967 से लेकर 1975-74 तक इंदिरा जी ने एक ही काम किया, और वो एक काम यह किया कि कांग्रेस को नष्ट किया और अपनी प्रतिमा बढ़ाई। आज भी अब कांग्रेस का महत्व नहीं है, महत्व इंदिरा जी का है। जिस तरफ इंदिरा जी होंगी उस तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे, उनका महत्व होगा। इंदिरा जी का शासन गया, कांग्रेस का शासन गया, इसमें से एक खालीपन आया, एक रिक्तता समाज में पैदा हुई। ये रिक्तता क्यों पैदा हुई? 1885 से लेकर कांग्रेस ने इस देश में जो काम किया उसके कारण कांग्रेस के लिए क्रेडिबिलिटी आ गई थी, एक विश्वास लोगों का उस संस्था ने प्राप्त कर लिया था। अब कोई संस्था ऐसी नहीं रही जिसमें लोगों का विश्वास हो, इसलिए एक रिक्तता आ गई। इस खालीपन में, इस रिक्तता में जनता पार्टी आई, और वो भी जनता पार्टी कोई एक वस्त्र बनकर नहीं है आई जिसमें ताना बाना हो, एक एक वस्त्र पूरा वस्त्र हो, इस तरह से जनता पार्टी नहीं बनी। वो तो पैबंदों की, पैचेस की बनी। इसलिए उसमें एक जीवता नहीं आ सकी। तो अब इस देश में ये जो खालीपन है इसको कौन भरे? इसको भरने की आवश्यकता है। जनता पार्टी इसको भर सकेगी ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता। उसने अब तक एक ही काम किया कि इंदिरा जी का पीछा किया और उनका महत्व बढ़ा दिया। इंदिरा जी का कैनवासिंग जितना जनता पार्टी ने किया है उतना उनके भक्तों ने नहीं किया। इंदिरा जी की प्रतिमा बढ़ाने में जनता पार्टी का हाथ बहुत बड़ा है। ये इतना एक ही काम उन्होंने किया, शासन वो पार्टी कर नहीं सकी, आज भी कर नहीं सक रही है। ऐसी परिस्थिति में क्या हो, नागरिक इसको संभालेगा इस परिस्थिति को कि पॉलिटिशियन संभालेगा? पॉलिटिशियन और नागरिक में मैंने अंतर किया। राजनीति के राजकारण के क्षेत्र में तीन तरह के लोग काम करते हैं। एक होता है स्टेट्समैन, दूसरा डिप्लोमेट और तीसरा पॉलिटिशियन। स्टेट्समैन किसे कहते हैं? जिसमें इतनी बुद्धिमानी होती है कि समस्याओं को समझता है, समस्याओं को समझकर उन समस्याओं के जवाब खोजता है और परिस्थिति को संभालता है, ये स्टेट्समैन कहलाता है। असल में स्टेट्समैन का अर्थ है लोक नेता करना चाहिए, लोक पुरुष, जन पुरुष। ये प्रतिनिधि अक्सर नहीं होता, कभी कभी प्रतिनिधि भी होता है लेकिन अक्सर ये प्रतिनिधि नहीं होता। लोकमान्य प्रतिनिधि नहीं थे, महात्मा गांधी प्रतिनिधि नहीं थे, जवाहरलाल जी स्टेट्समैन भी थे और प्रतिनिधि भी थे। ये किसी का चुना हुआ आदमी नहीं होता, चुना हुआ जो होता है वो हमारा बनाया हुआ होता है। जिसको हम बनाते हैं उसको हम तोड़ भी सकते हैं, मिटा सकते हैं, बनाने और मिटाने वाले हम होते हैं। मैंने उसका उदाहरण दिया है सुपारी का गणेश। पूजा में हम सुपारी के गणपति बनाते हैं, देवता उसको मान लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं, पूजा समाप्त होने पर उसका विसर्जन कर देते हैं तो देवता निकल जाता है सुपारी में से, फिर उसको कतर कर खा लेते हैं। तो ये जो सुपारी का गणेश होता है ये प्रतिनिधि होता है, जो हमारा बनाया हुआ होता है, हमारा मिटाया हुआ होता है। स्टेट्समैन ऐसा नहीं होता, उसकी प्रतिष्ठा हम पर निर्भर नहीं होती है। दूसरा होता है डिप्लोमेट। इस डिप्लोमेट का एक शील होता है, उसका एक स्वभाव होता है कि मन में जो है वो कभी ना कहो, ये डिप्लोमेसी है। इसे मुत्सद्दी कहते हैं कि जो अपने दिल में है उसको छिपाओ। उसके दो लक्षण बताए हैं, इफ ए डिप्लोमेट सेज यस ही मीन्स परहैप्स, इफ ही सेज परहैप्स ही मीन्स नो, एंड इफ ही सेज नो ही इज नॉट ए डिप्लोमेट। किसी बात से इनकार नहीं करता, हाँ कह देगा तो उसका मतलब समझिए कि देखेंगे, शायद देखेंगे कहेगा तो उसका मतलब नहीं समझ लेना चाहिए, वो नहीं कभी कहेगा नहीं। दूसरा लक्षण यह है कि मैं क्या कहना चाहता हूं इसको खूब अच्छी तरह समझो, मेरा प्रतिपक्षी क्या चाहता है उसको भी अच्छी तरह समझ लो, फिर अपनी बात ऐसे शब्दों में रखो कि प्रतिपक्षी ऐसा समझे कि ये मेरा ही काम कर रहा, मेरी ही बात चाहता है। ये जो चतुराई होती है इस आदमी का नाम डिप्लोमेसी है। और तीसरा पॉलिटिशियन है। समाज में कुछ पार्टी क्लिक्स होती हैं, पार्टी अलग और पावर क्लिक्स अलग चीज है। समाज में कुछ पार्टी क्लिक्स होती हैं और कुछ प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट। समाज में संगठित स्वार्थ होते हैं, उनके प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं। ये विद्यार्थियों का स्वार्थ है, ये मजदूरों का स्वार्थ है, ये मालिकों का स्वार्थ है, ये प्रोफेसरों का स्वार्थ है, ये कॉलेज के संचालकों का स्वार्थ है। इसलिए अलग 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 इस तरह के इंटरेस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट। ये जो ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट होते हैं, ये इनमें जब शक्ति आ जाती है तो ये प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं। प्रेशर ग्रुप वो ग्रुप है, वो समाज में वो गिरोह है जो गिरोह समाज को तंग कर सकता है, समाज को डरा सकता है, समाज को तंग कर सकता है, उसे प्रेशर ग्रुप कहते हैं। समाज को तकलीफ दे सकता है, कष्ट दे सकता है, ऐसे प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं। इन प्रेशर ग्रुप्स में एक मिडिल मैन होता है जो इनमें दलाली करता है, उसका नाम है पॉलिटिशियन। वो की मैन होता है, जैसे बाजार में की मैन है दलाल ब्रोकर, उस तरह से पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जो की मैन होता है, मिडिल मैन, उसका नाम पॉलिटिशियन। मैं आपसे आज ये कहने आया हूं कि इन तीनों का राजकारण असली राजकारण नहीं है, इट इज पेटीफॉर्मिंग पॉलिटिक्स। इसमें क्या क्या होता है? पैलेस इंट्रीग्स, पैलेस पॉलिटिक्स, पैलेस रिवोल्यूशंस भी मान लीजिए। क्रांति कहां होती है? राजमहल में, दरबार में। दरबारी क्रांति ये करता है। दूसरा क्या करता है? पावर पॉलिटिक्स में जाता है, सत्ता की राजनीति में शतरंज के खेल खेलता है। इस पॉलिटिशियन के लिए एवरी नॉन ऑफिशियल नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन is an errand boy of the establishment। जितनी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, फिर आपकी लोक समिति क्यों न हो, वो उसको अपने संदेशिया बना लेता है। errand boy वो होता है जो छोटे काम करता है, यहां से वहां संदेशा देना है, चिट्ठी डालना है, बाजार से सौदा लाना है, इस तरह के काम जो फुटकर काम करता है उसे errand boy कहते हैं। तो वो सारी गैर सरकारी संस्थाओं को अपना errand boy बना लेना चाहता है और उस तरह से उनका उपयोग करता है। आज हमारे देश में ये परिस्थिति है। इस परिस्थिति में से हमको रास्ता खोजना है, इसका जवाब खोजना है। जवाब एक ही है, ज्यादा इससे सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। जवाब एक ही है कि इसके लिए जागरूक नागरिक चाहिए। लोकतंत्र में सर्वसत्ताधीश सॉवरेन नागरिक है और वो अगर जागरूक नहीं है तो मित्रों आप खूब समझ लीजिए, उसके नाम पर सारे अनाचार और सारे अत्याचार होंगे जो आज हमारे समाज में सब तरफ हो रहे हैं। ईश्वर ने कुछ समझ कर हमको ऐसा देश दिया जो मानवीय सहजीवन की लेबोरेटरी हो सकती है, ये प्रयोगशाला प्रयोग भूमि हो सकती है मानवीय सहजीवन की, टुगेदरनेस की। लिविंग टुगेदर, सिर्फ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नहीं, शांति में सह अस्तित्व अलग चीज है और लिविंग टुगेदर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब विज्ञान यहां तक पहुंच गया है कि या तो मनुष्य का सहजीवन होगा या मनुष्य नष्ट होगा, या तो विश्व मानव बनकर रहेगा, यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी, या फिर फ्रैगमेंट्स में बट जाएगा और इसके टुकड़े टुकड़े ठीकरे ठीकरे होने के बाद विज्ञान, विनाशकारी विज्ञान जहां पहुंचा है उसका उपयोग मानव एक दूसरे के खिलाफ करेंगे। विज्ञान ने क्या किया है मित्रों? विज्ञान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझता हूं इतना पराक्रम धर्म नहीं कर सका है, कोई तत्वज्ञान दर्शन भी नहीं कर सका है जितना विज्ञान ने पराक्रम किया है। मनुष्य को मनुष्य के निकट लाकर रख दिया। इट हैज प्लेस्ड द होल वर्ल्ड एट क्लोज क्वार्टर्स। अब मनुष्य मनुष्य के निकट आ गया है। यहां से मुंबई जाने में जितना वक्त लगता है उतने समय में वो लंदन पहुंच जाता है। सवेरे का नाश्ता दिल्ली में करता है, दोपहर का भोजन लंदन में करता है और रात का भोजन न्यूयॉर्क में करता है। इतना ये संसार सट गया है, ये जगत, ये विज्ञान का वरदान है, विज्ञान का उपकार है। कभी आपने सुना था कि दुनिया के एक कोने में अकाल पड़े और दुनिया के दूसरे कोने से अन्न आ रहा है? ये कभी सुना था? न ये वेद में है, न कुरान में है, न बाइबल में है, न पुराण में है, कहीं भी नहीं है। हमारे पुराणों में स्वर्ग लोक से आते थे देवता मदद करने के लिए राजाओं की, लेकिन इस जगत में एक जगह का संकट एक जगह के संकट का निवारण करने के लिए दुनिया के दूसरे कोने से सहायता आती हो, ये कभी नहीं हुआ। धर्म में ये शक्ति नहीं थी, तत्व ज्ञान और दर्शन में भी ये शक्ति नहीं थी। क्यों नहीं थी मैं बताऊंगा, लेकिन ये विज्ञान में यह शक्ति थी। अब जब मनुष्य एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो कुश्ती होगी या आलिंगन होगी। दोनों का दिमाग अगर उल्टा होगा तो कुश्ती होगी, दोनों का हृदय अगर नजदीक आएगा तो आलिंगन होगा। ये सवाल संस्कृति के सामने है, ये सवाल धर्म और दर्शन के सामने है कि विज्ञान के कारण ये एक दूसरे के निकट आए हुए मानव कुश्ती लड़ेंगे या आलिंगन करेंगे। अब तक क्या हुआ, विज्ञान व्यापक है, क्षितिज व्यापी है, विश्वव्यापी है, लेकिन संस्कृति धर्म और दर्शन क्षितिज व्यापी या विश्वव्यापी नहीं है। ये सारे संगठित हो गए हैं। विज्ञान जिस अंश में संगठित हुआ है उस अंश में विज्ञान भी पराजित हुआ है। संगठित विज्ञान फेल हो गया है, हार गया है। इट्स एन एज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ साइंस। कौन सा साइंस? जो साइंस संगठित हो गया है, जो विज्ञान पुलिस के हाथ में चला गया, जो विज्ञान पॉलिटिशियंस के हाथ में चला गया, जो विज्ञान धार्मिक मनुष्यों के हाथ में चला गया, वो विज्ञान फेल हो गया है, असफल हो गया है। यूनिवर्सल है उतना ही विज्ञान सफल है। विज्ञान कहता है कि दुनिया भर में कहीं भी जाओ, शक्कर मीठी है और नमक खारा है। संस्कृति कहती है मेरा नमक भी मीठा है और उसकी शक्कर भी खारी है। राज्य कहते हैं कि हमारा करेला मीठा है और उसका केला कड़वा है। संगठित दर्शन, संगठित धर्म, संगठित तत्व ज्ञान, ये सब के सब अधार्मिक और अतात्विक हो जाते हैं। एक दफा शैतान अपने दो शिष्यों के साथ जा रहा था। एक छोटा शिष्य था, एक बड़ा था, एक सीनियर जूनियर। वो छोटा आगे आगे चल रहा था, एकदम रास्ते में खड़ा हो गया, ठिठक गया और कुछ चमकीली चीज उसको दिखाई दी, उठाकर अपने जेब में रख ली। ये बड़ा शिष्य देख रहा था, उसने देखा, कहा शैतान से कि देखिए गुरुजी, इस छोटे शिष्य ने कोई चीज उठा ली है, अपनी जेब में रख ली है, आपको बता नहीं रहा। शैतान ने उसको बुलाया, क्यों रे क्या उठाया? कहा कुछ नहीं, सत्य का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, चमक रहा था, अच्छा लुभावना मालूम हुआ, मैंने उठाकर जेब में रख लिया। शैतान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, पूरा सत्य नहीं है, टुकड़ा है और ये इसको संगठित करने वाला। There is no fear because he is going to organize. Organized truth becomes falsehood. Organized religion becomes irreligion. Organized philosophy becomes a school of philosophy. Sampradaya ban jata hai. ये सारे denominational सांप्रदायिक बन जाते हैं, सेक्टेरियन बन जाते हैं। तो मित्रों, संस्कृति अब तक एलीट की रही, अवर कल्चर इज स्टिल ए फाइव स्टार कल्चर, फाइव स्टार होटल्स जैसे होते हैं वैसा फाइव स्टार कल्चर है, विच इज को एग्जिस्टिंग विथ पॉवर्टी, पेन्यूरी, भूख के साथ, नंग के साथ, कंगालियत के साथ यह हमारी संस्कृति जी रही है। ये एलिट कल्चर है, संगठित हो जाता है इसलिए इसमें प्राण नहीं रहे। विज्ञान में प्राण है और इसमें हमारे संस्कृति में प्राण नहीं है। इसका कारण है कि संस्कृति मेरी और तुम्हारी है, विज्ञान किसी का नहीं है, सर्वसुलभ है। चंद्रमा पर आप भी जा सकते हैं, कुत्ता भी जा सकता है। संस्कृति सर्वसुलभ नहीं हो सकी, व्यापक नहीं हो सकी। आप देखिए इस संस्कृति में, अपनी संस्कृति की बात करता हूं, हिंदू संस्कृति की, इस संस्कृति में भंगी के लिए कहीं जगह है? इस संस्कृति से उसको प्रेम हो और अभिमान हो, ऐसी कौन सी चीज इसमें है? अछूत के लिए कोई जगह है? हमारे यहां तो यहां तक है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए एक शब्द है तीनों को मिलाकर, द्विज, लेकिन चारों वर्णों के लिए एक शब्द पुरानी किसी ग्रंथ में है ही नहीं। ये हिंदू शब्द तो आधुनिक है, किसी पुराने ग्रंथ में चारों वर्णों के लिए एक शब्द हो ऐसा है नहीं। इसका कारण वो इलेक्ट एक्सक्लूसिव थी, इंक्लूसिव नहीं, व्यावर्तक रही, व्यापक नहीं। विज्ञान व्यापक है, संस्कृति व्यावर्तक है। इसलिए इस विरोध में से, इस संघर्ष में से हमारी सारी परेशानियां, दुनिया की सारी अशांति पैदा हुई। विज्ञान का उपयोग हर धर्म, हर संप्रदाय, हर संस्कृति अपने लिए करना चाहती, मनुष्य के लिए नहीं। मनुष्य का मनुष्य के नाते मूल्य नहीं है, मनुष्य के लेवल्स का मूल्य है। अनलेवल्ड, अनकमिटेड ह्यूमन बीइंग, उसके लिए आज के संसार में कोई स्थान नहीं है। तो मित्रों, अब पॉलिटिक्स हो, सोशल रिफॉर्म हो, रिलीजियस रिफॉर्म हो, उन सब का लक्ष्य एक होना चाहिए, यूनिवर्सल मैन, या मैन ही सिर्फ कहिए कैपिटल एम के साथ, मनुष्य। कैसा मनुष्य? शुद्ध मानव, निरपेक्ष मानवता, निरी मानवता, शुद्ध मानवता ही अब हमारा लक्ष्य हो सकता है हमारी सारी सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का। वो कम्युनिस्ट कल्चर भी नहीं होगा, वो सोशलिस्ट कल्चर भी नहीं होगा, कैपिटलिस्ट और एलिटिस्ट तो होगा ही नहीं, उस पर कोई छाप नहीं होगी। तो इस कल्चर के, इस संस्कृति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा? इसमें बाधक कौन कौन सी चीजें हैं? पहली रुकावट, जैसा मैंने आपसे कहा, धर्म की रुकावट है। धर्म संप्रदाय, संगठित धर्म की बात मैं कह रहा हूं, ईश्वर और मनुष्य के संबंध की बात नहीं कह रहा हूं। ईश्वर और मनुष्य का संबंध वो सब जगह है, लेकिन धर्म हम किसे कहते हैं? एक हिंदू है, एक मुसलमान है, दोनों सच बोलते हैं, फिर भी हिंदू मुसलमान है। दोनों झूठ बोलते हैं, तब भी हिंदू मुसलमान है। धर्म में से ईश्वर और नैतिकता को निकालने के बाद जो बच जाता है उसका नाम धर्म है, क्योंकि ईश्वर तो सभी धर्मों में है, नैतिकता सभी धर्मों में है। तो जो सब में है वो तो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय नहीं बन सकता, वो तो सार्ववर्णिक और सर्वमानवीय है, वो तो नहीं बन सकता। इनको निकाल देने के बाद जो बच जाता है उसका नाम धर्म है। मस्जिद का ईश्वर, मंदिर का ईश्वर, गुरुद्वारे का ईश्वर, चर्च का ईश्वर, ये सारे ईश्वर, इनमें ईश्वर कॉमन फैक्टर है, और आप जानते हैं जो कॉमन फैक्टर होता है वो कैंसल हो जाता है, और फिर बच गए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च। दिस इज चर्चियनिटी, दिस इज नॉट क्रिश्चियनिटी। ये संप्रदाय होता है, तो ये संप्रदाय पहली दिक्कत है मित्र, जिसके कारण मनुष्य बट गया है। ईश्वर भक्ति हो, सदाचार हो, मनुष्य मनुष्य का रिश्ता हो, किनशिप एंड नॉट एलियनेशन। आज वी आर सफरिंग फ्रॉम कल्चरल एलियनेशन एंड नॉट फ्रॉम कल्चरल इंक्लूजन। अब हम लोगों को अपने में शामिल नहीं करते, अपनी अस्मिता को अलग रखना चाहते हैं। भगवान ने हमको ऐसा देश दिया था जिस देश में हम व्यापक संस्कृति का विकास कर सकते थे, व्यापक मानवता का और व्यापक संस्कृति का। इस देश में जितने अलग अलग संप्रदाय हैं, इस देश में जितने अलग अलग रंग रूप हैं, इस देश में जितनी अलग अलग भाषाएं हैं, इस देश में जितने खान पान के और पोशाक के तौर तरीके हैं, उतने दुनिया में और कहीं नहीं है। इसमें से हम मनुष्यों का सहजीवन विकसित कर सकते थे, लेकिन ये हमने नहीं किया। उल्टे सह अस्तित्व पर आकर रुक गए। तुम भी रहो, हम भी रहेंगे, तुम हमारे बीच मत आओ, हम तुम्हारे बीच नहीं आएंगे। एक दूसरे के जीवन में हम किसी का हस्तक्षेप न हो। स्ट्रॉन्ग फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तुम्हारी दीवार और हमारी दीवार, दोनों की दीवार पक्की हो तो फिर तुम्हारा प्रवेश हमारे घर में नहीं होगा, हमारा प्रवेश तुम्हारे घर में नहीं होगा। इसे सह अस्तित्व कहते हैं। तुम भी जियो, हम भी जिएंगे, लेकिन ये इसका अतिरेक हमारे देश में हुआ। हमारे गांव में हम सारे हिंदू एक दूसरे के पड़ोस में रहे, लेकिन एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहे। हर एक का अलग अलग मोहल्ला है, आज भी है, कल भी था। पेली, माली, कोरी, कणवी, ब्राह्मण, सबके अलग अलग मोहल्ले थे और अलग अलग वो रहते थे। तो हमारे देश में जाति स्थान तो पहले से ही था। संप्रदायवाद के कारण पाकिस्तान आया और भाषावाद के कारण भाषिस्तान आए। आप देख रहे हैं कि कैसे हम कैसा विकास हुआ, कल्चरल प्रोग्रेस किस तरफ को हुआ। इसे पुच्छ प्रगति कहते हैं, केल की तरफ को हुआ, पीछे की तरफ। यह जितने अगल बगल में पड़ोस में रहने वाले थे, इनका सहजीवन कभी हो नहीं सका। हम सहजीवन कभी सिद्ध नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? तो धर्म की बात मैंने बतला दी। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में, संगठित धर्म में जो दोष है वो यह है कि उसमें से नैतिकता और ईश्वर को निकाल देने के बाद जो बच जाता है उसी का नाम संगठित धर्म है। उसकी नमाज तो उपासना है, लेकिन उसका धर्म किस चीज में है? खतना में। हमारा भी विधि विधानों में है। अब विनोबा है, वो बाइबल को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, अवेस्ता को भी मानते हैं, जपू जी को भी मानते हैं, और इन सबको पढ़ने में उतने ही प्रेम से पढ़ते हैं जितने प्रेम से भगवद गीता पढ़ते हैं। लेकिन कोई मुसलमान उन्हें मुसलमान नहीं कहेगा, कोई ईसाई उन्हें ईसाई नहीं कहेगा। इसका कारण इस्लामियत और ईसाईयत ईश्वर और नैतिकता से कुछ अलग चीज है। इस कारण संस्कृति में धर्म का प्रवेश होते ही संस्कृति भी संकीर्ण बन गई, सीमित बन गई। पड़ोस पड़ोस में रहे लेकिन साथ नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? दो कारण थे, एक संप्रदाय और दूसरी जाति। संप्रदाय का विवेचन मैंने अब तक किया, दूसरी आई जाति। जाति का क्या लक्षण है? दूसरे से जो जितना दूर रहेगा उतना पवित्र समझा जाएगा, ये जाति का लक्षण है। जो किसी के साथ बैठता उठता नहीं, खाता पीता नहीं, शादी नहीं करता, वो पवित्र है। यानी मनुष्य से जो जितना दूर रहेगा वो उतना पवित्र होगा, ईश्वर के नजदीक रहेगा, ये जाति का लक्षण है। न हो तो मुझे आप समझा दें। अब इसका नतीजा क्या हुआ? मनुष्य से दूर रहने में ही अगर पवित्रता है तो सामाजिकता का विकास कैसे हो सकता है? मनुष्य का तो संबंध ही कॉन्टेजियन हो गया, मनुष्य का संपर्क संसर्ग हो गया। दोष है उसमें मनुष्य के संपर्क में। तो जो मनुष्य से दूर रहने में पवित्रता मानता है उसमें सामाजिकता का विकास कैसे हो सकता है? मुसलमानों ने सांप्रदायिकता को माना, इसलिए वो दूसरे समाजों के साथ नहीं रह सके। हिंदुओं में जाति है, संप्रदाय और जाति में एक फर्क है। संप्रदाय बदला जा सकता है, अब्दुल्ला गांधी बन सकता है हरिलाल गांधी का, और संप्रदाय से फिर छोड़ भी सकता है। जाति ली नहीं जा सकती। कोई ब्राह्मण तेली माली बन नहीं सकता, उसको पैदा ही होना होता है। नतीजा यह है कि जाति में एंट्रेंस का दरवाजा है ही नहीं, एग्जिट का ही दरवाजा, एक ही उसमें दरवाजा रहा और वो बाहर जाने का दरवाजा। परिणाम यह हुआ कि हिंदू समाज में से दूसरे समाजों में निर्यात ही निर्यात होगी, होते रहे, आयात कभी हुए, क्योंकि जाति थी। कोई आपसे कहे कि मैं लोगों को तेली बनाने जा रहा हूं तो आप हंसेंगे कि तेली बन सकता है? जाति में कोई जा ही नहीं सकता, संप्रदाय में जा सकता है, इसलिए संप्रदाय का विकास होता है, जाति का विकास नहीं हो सकता, और जातिबद्ध समाज का भी विकास नहीं हो सकता। मित्रों, अपनी असली कमजोरियों को समझ लेना है। हमें भ्रम यह हो गया है कि शारीरिक और शस्त्र शक्ति कम होने के कारण समाज पिछड़ गया, ऐसा नहीं हुआ है। इसके कुछ अंगभूत दोष हैं, उन अंगभूत दोषों को हमको हटाना होगा। तीसरा, भाषा। मैं एक कहा करता हूं और इसको आप लोग भी समझ लें, क्योंकि यह बड़ा भयंकर ये विधान है मेरा, स्टेटमेंट। मैं यह कहता हूं कि मनुष्य के मातृभाषा नहीं होती, मातृभाषा सिर्फ पशु के ही होती है। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि जिसे हम मातृभाषा कहते हैं मनुष्य को वो भाषा भी सीखनी ही पड़ती है। और प्रमुख उदाहरण दूंगा, आपके परिचित उदाहरण, इंदिरा जी का उदाहरण ले लीजिए। अब संजीव और राजीव की कौन सी मातृभाषा है? कश्मीरी है कि पारसियों की गुजराती है? ऐसे उदाहरण समाज में आज हैं कुछ। मनुष्य को हर भाषा मां कह। दूसरी चीज मनुष्य की विशेषता है, उसके भाषा का भाषांतर हो सकता है, पशुओं की भाषा का भाषांतर नहीं होता है। और तीसरा गुण मनुष्य का है कि दूसरी भाषाएं सीखने में वो गौरव अनुभव करता है। विनोबा को 22 भाषाएं आती हैं, बड़े गौरव की बात है, बड़े विद्वान माने जाते हैं। असल में तो कहना यह चाहिए था कि मातृभाषा को छोड़कर दूसरी भाषाएं सीखता है रद्दी आदमी है, इसमें कोई स्वाभिमान नहीं है, ये हम नहीं कहते हैं। ये कारण है जिनके कारण मनुष्य में संकीर्णता आ गई, व्यावर्तक जीवन उसका हो गया, एक्सक्लूसिव क्लोज सोसाइटीज बन गई। इन सब का निराकरण करना है, यह संपूर्ण क्रांति है। एक बात में तो सबका एक मत है कि गरीबी और अमीरी नष्ट होनी चाहिए। ये कार्ल मार्क्स ने कहा सबसे पहले, कार्ल मार्क्स से पहले किसी ने कहा नहीं था कि गरीबी और अमीरी नष्ट हो सकती है, नष्ट होनी चाहिए। सारे धर्मों ने इतना ही कहा कि गरीबों को सुखी करो, दान करो। पॉवर्टी वॉज डिजाइंड विद ए व्यू टू चैरिटी, दान के लिए अवसर रहे, अवकाश रहे, इसलिए भगवान ने गरीबी बनाई, दरिद्रता बनाई। कार्ल मार्क्स पहला आदमी था जिसने यह कहा कि एक दिन आएगा जब गरीबी अमीरी नहीं रहेगी और नहीं रहनी चाहिए। तो इसमें तो सबका एक मत है, गरीबी और अमीरी मिटाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी। जैसे मैंने संप्रदायवाद, जातिवाद और भाषावाद तीन के लिए बतलाया, ऐसे गरीबी अमीरी का कारण क्या है। गरीबी अमीरी का कारण यह है कि जो उत्पादक है उसकी प्रतिष्ठा नहीं समाज में, उपभोक्ता की प्रतिष्ठा है। जूता बनाने वाला प्रतिष्ठित नहीं है, जूता पहनने वाला प्रतिष्ठित है। कपड़ा बुनने वाला प्रतिष्ठित नहीं है, कपड़ा पहनने वाला प्रतिष्ठित है। इसका कारण हमने गलत मूल्य मान लिए गए, रॉन्ग वैल्यूज, मिस्टेकन वैल्यूज। और ये वैल्यूज, ये मूल्य गलत हो गए, इसका कारण यह है कि वितरण का आधार बेच और खरीद, विक्री और खरीद, विक्री और खरीद दोनों ये वितरण के आधार हैं। वस्तु उसको मिलती है जो खरीद सकता है, उसको नहीं मिलती जिसको जरूरत है। आपका बेटा बीमार है, आपके पास पैसा नहीं है तो उसे दवा नहीं मिलेगी। मेरा बेटा बीमार नहीं है लेकिन मेरे पास पैसा है तो मैं दवा रख सकता हूं बगैर बीमारी के भी। तो क्या हो गया, जहां भूख है वहां अन्न नहीं, जहां भूख अन्न है वहां भूख नहीं।